मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे लोकतंत्र के जो चार मुख्य स्तंभ माने जा रहे हैं उन पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले एक दो जो दूसरी घटनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं और फिर हम लोग इस विषय पर आएंगे। आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं अभय कुमार दुबे जी का, एजुकेशन के ऊपर है, खासकर विदेशी विश्वविद्यालयों को जो अब भारत में परिसर खोल करके और एजुकेशन देने की जो अनुमति दी गई है उसको लेकर उन्होंने ये लेख लिखा है। अभय कुमार दुबे जी बहुत अच्छा लिखते हैं, खासकर आपके लिए, और इसलिए जब भी आपको कहीं इनके लेख पढ़ने को मिले तो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। और ज्यादातर इनके जो लेख होते हैं वो समसामयिक विषयों पर होते हैं, आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। इनके लेखों में तथ्य होते हैं और तर्क भी होते हैं, तथ्यों का इस्तेमाल अपने तर्कों को सिद्ध करने के लिए करते हैं, या यूं कह लीजिए कि तथ्यों के आधार पर ही अपने तर्क निकालते हैं। दोस्तों एजुकेशन पर पहले हमेशा मेंस में क्वेश्चन आया करते थे, पहले का मतलब नहीं, दो तीन साल पहले तक, अभी इधर थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन वो दूसरे तरह के प्रश्न आ रहे हैं। मुझे लगता है कि चूंकि भारत सरकार ने, यूजीसी ने कह लीजिए कि चूंकि विदेशी विश्वविद्यालयों को यह अनुमति दे दी है कि वो भारत में आकर के अपने कैंपस खोलें और एजुकेशन दे सकते हैं, बस जो एजुकेशन देनी होगी वो ऑफलाइन एजुकेशन ही हो सकती है, ऑनलाइन नहीं, इस पर हम लोगों ने बातें की थी। हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में न पूछा जाए लेकिन मेन्स में आ जाए, तो आपके पास इसका उत्तर देने के लिए कुछ तथ्य होने चाहिए। तथ्य, वो तथ्य आप कहां से लाएंगे? दरअसल वे तथ्य इन्हीं आर्टिकल्स से ही निकलते हैं। इन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप बकायदे इस आर्टिकल को पढ़ें, क्योंकि क्षमता तो आप में तभी पैदा होगी ना जबकि आप पढ़ करके और उसमें से सार निकाल सकेंगे। आपकी मदद के लिए मैं अभी दो पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। जो पहला पॉइंट है वो ये है, जो तर्क दिया जाता है जिसको ये काट रहे हैं, यह सरकार का ये कहना है कि हमारे यहां से लगभग 18 लाख स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, और उससे हमारा कितना धन बाहर चला जाता है, और अगर उन्हें विदेशी शिक्षा के उसी लेवल की शिक्षा यहां मिल जाएगी तो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रह करके वो पढ़ाई करेंगे, तो क्या इससे प्रतिभा पलायन रुक सकता है? ये प्रश्न उठता है, क्या यह सच होगा? इन्होंने लिखा है कि नहीं, यह सच शायद न हो सके। उसका कारण यह दिया है कि जो विदेश के जो विश्वविद्यालय आएंगे भी यहां, तो जरूरी नहीं है कि वे बकायदे उसी स्तर की शिक्षा यहां दे सके। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि हमारे जो सरकारी विश्वविद्यालय या जो प्राइवेट विश्वविद्यालय भी हैं, चूंकि विदेशी विश्वविद्यालय यहां आ जाएंगे तो उनमें कॉम्पिटिशन की भावना होगी, वो कॉम्पीट करके अपना स्तर सुधारेंगे। इसको भी इन्होंने तर्क के द्वारा काटा है कि ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। एक पॉइंट इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण रखा है, जिसे मैं फर्स्ट पॉइंट कहना चाहूंगा, वो ये कि विदेशी विश्वविद्यालय आ जाएंगे, हमारे यहां अभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस बहुत हाई है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तब सवाल यह है कि जो अच्छी नौकरियां हैं वो फिर किनको मिलेंगी? ये जो विदेशी विश्वविद्यालयों से पढ़ करके निकल रहे हैं इनकी फीस बहुत हाई होगी, मध्यम वर्ग सामान्य वर्ग का व्यक्ति वहां अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकेगा, तो फिर से शिक्षा के क्षेत्र को आधार बना करके आप कह सकते हैं कि एक सामाजिक असमानता की स्थिति पैदा हो जाएगी जो पहले पब्लिक स्कूल्स के जरिए होती थी। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। फिर एक पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा शोध प्रबंधों को लेकर के रेज किया है, तो उसे आप पढ़ें और कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे से निकाल लें। दोस्तों कल जो जयपुर में सम्मेलन जो पूरा हुआ, खासकर पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हो रहा था, पीठासीन अधिकारी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन चलिए कह देते हैं पीठासीन अधिकारी, एक तरह से अधिकार ही मिल जाते हैं भले वो संवैधानिक अधिकार हो। उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, सम्मेलन में प्रस्ताव ये पारित किया गया कि आपको मालूम है कि किस तरह से न्यायपालिका और विधायिका के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, और सिचुएशन ये आ रही है कि संसद या विधानसभाएं कानून पारित करती हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो कानून फिर चला जाता है जनहित याचिका के तहत, और फिर पता लगा कि या तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है या उस पर मुहर लगा देता है। इसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। अब ये जो सम्मेलन था, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था, उन्होंने व्यावहारिक स्तर पर इस बिंदु पर काफी विस्तार के साथ बात की और उसके बाद फिर प्रस्ताव पारित किया, और वो प्रस्ताव ये है कि अब वो समय आ गया है जबकि राष्ट्रपति को चाहिए कि वे अपना हस्तक्षेप करें, और खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो विधायिका के कार्यों में इतना जबरदस्त रूप से दखल देने लगा है उसके बारे में कोई सख्त निर्णय लें। इसका मतलब है कि हमारे यहां जो सेपरेशन ऑफ पावर की स्थिति है उसे बहाल किया जाए। कहने का यही मतलब है, यानी कि संसद सर्वोच्च हो, संसद ने जो कानून बना दिया है, क्योंकि जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं वे संसद में बैठते हैं और वो विधायिका है, कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है, तो इस मामले में संसद की सुप्रीमेसी बनी रहनी चाहिए, ये कहने का अर्थ है। दोस्तों, इसको लेकर के आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल कमेंट भी है, एडिटोरियल कमेंट छपा है और मैं चाहूंगा कि आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़ने की कोशिश करें। यदि आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है कि मैं इसका हिंदी वर्जन आपको उपलब्ध कराऊं। इसमें उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है और खासकर जो दैनिक भास्कर का भी आज एक एडिटोरियल कमेंट है उसमें भी यही पॉइंट रेज किया हुआ है। रेज ये किया हुआ है कि क्या संसद को कानून बनाने का संप्रभु अधिकार, यानी कि पूरी तरह से वो संप्रभु हो, दिया जा सकता है, क्या यह व्यावहारिक होगा? क्योंकि जब लोकतंत्र की बात की जाती है तो लोकतंत्र में जो बहुमत होता है वो सत्ता में होता है, तो बहुमत के भी तो तानाशाही का खतरा पैदा हो सकता है। और सच पूछे तो 1975 में जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी, इसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें ये देखा गया कि किस प्रकार से हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है, उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई और एक प्रकार से प्रधानमंत्री को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया, या यूं कह लीजिए कि संसद को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया, जुडिशरी को कमजोर कर दिया गया। तो क्या हम इस स्थिति को स्वीकार करें? और अगर हम इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या सही मायने में यह लोकतंत्र होगा? इसको लेकर के प्रश्न उठाया गया है और मुझे लगता है कि यह बहुत जायज प्रश्न है कि फिर होना क्या चाहिए, क्योंकि यदि हम संसद को संप्रभु मान लेते हैं तो एक प्रकार से बहुसंख्यक वर्ग का ही प्रभुत्व हो जाएगा, फिर अल्पसंख्यकों का क्या होगा? एक खबर आपको अखबारों में पढ़ने को मिल रही होगी कि जो इसराइल में अभी जो प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं वो न्यायपालिका के अधिकारों को कम करने की कोशिश उन्होंने की है और इसको लेकर के जो लोग हैं वो आंदोलन पर उतर आए हैं। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि न्यायपालिका की शक्तियों को कम किया जाए। न्यायपालिका की शक्ति को कम करने का मतलब ही होता है कि विधायिका की शक्ति को बढ़ाना, या यूं कह लीजिए कि उसे इतना सुप्रीम मान लेना कि वो जो कहे वही सत्य है। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा अभी ये चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, और मुझे लगता है कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और खासकर ऐसे स्टूडेंट भी जो अब इंटरव्यू में अपीयर होंगे, उन्हें अपना व्यू इस पर एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए ताकि इंटरव्यू देते समय वो गड़बड़ा न जाएं। जो दैनिक भास्कर का एडिटोरियल कमेंट है, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और वो है कि लोकतंत्र के क्या चार मुख्य स्तंभ हो सकते हैं। यह विषय मैंने दैनिक भास्कर का जो आज का एडिटोरियल कमेंट है वहीं से लिया है। इसमें फ्रेंच राजनीतिक दार्शनिक टॉकविल, इनके नाम से एक रेफरेंस है और मैं चाहूंगा कि यह रेफरेंस आपको नोट कर लेना चाहिए, यह आपके काम आएगा, खासकर अभी जिस तरह की सिचुएशन बन रही है उसमें तो विशेष रूप से। उन्होंने अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है उसकी स्टडी की थी और फिर उन्होंने जो बहुमत का आतंक हो सकता है उसके प्रति सचेत किया था, बहुमत का आतंक, इस बहुमत के आतंक से कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। मैं वो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं और इन्हें ही मैंने कहा है चार मुख्य स्तंभ। पहला माना गया बहुमत का शासन। देखिए, लोकतंत्र अगर है सिस्टम में तो बहुमत का शासन तो आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज चुनाव का क्या मतलब होगा? जिस राजनीतिक दल के आधे से अधिक सदस्य चुनकर आएंगे उनका शासन होगा। अब इन पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाए ताकि ये संतुलित तरीके से लोकतंत्र की आत्मा के अनुकूल, जो वास्तव में लोकतंत्र देशों के साथ होना चाहिए, उसके तहत वो काम कर सके। तो अगले जो तीन पॉइंट हैं, देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें एक कहा गया अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, इंश्योर किया जाना चाहिए कि अब जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके अधिकारों का हनन न हो। तो ये रक्षा कैसे हो सकती है? ये संवैधानिक तरीके से ही रक्षा हो सकती है कि बकायदे संविधान में ही इसकी व्यवस्था कर दी जानी चाहिए और भारतीय संविधान में ऐसा है। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार, अभी हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे, सेपरेशन ऑफ पावर, विधायिका और न्यायपालिका में जो अभी द्वंद की स्थिति बनी हुई है उस पर, तो संवैधानिक सरकार यानी कि सरकार चाहे कोई भी हो, लोकतांत्रिक सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन जो हमारा संविधान है उसके प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए और संविधान में जो प्रोविजन किए गए हैं उनके सारे कार्य, सारे कदम, सारे एक्ट उन प्रोविजंस के तहत ही होने चाहिए। संविधान का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि यह अनुमति कौन दे, इसकी निगरानी कैसे की जाए। फिर से आपको यहां एक पॉइंट मिल जाता है, तो क्या फिर न्यायपालिका उसकी निगरानी करे कि संसद ने जो कानून बनाया है वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है। तो तीसरा पॉइंट था संवैधानिक सरकार, पहला बहुमत का शासन, दूसरा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, तीसरा संवैधानिक सरकार, और चौथा विमर्श से शासन। जो शासन चलेगा वो बातचीत के जरिए चलेगा। देखिए, जब हम कहते हैं विमर्श से शासन तो इसके दो भाग हो जाते हैं। पहला तो यह है कि जो अपोजिशन में है, जो पार्टीज, देखिए वो भी चुनकर के ही आए हैं, वो अपनी तरफ से नहीं आए हैं, उनको भी जनता ने ही चुना है, भले ही उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, तो जिन जनता ने चुना है वो भारत के ही नागरिक है, उसी देश के नागरिक हैं, तो उनसे भी बातचीत की जानी चाहिए। नो डाउट कि जो बहुमत का शासन होगा वो जिस पर भी चाहे वो कानून बना सकता है, उसे दूसरों की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी विमर्श होना चाहिए। दूसरा, जब हम विमर्श की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाता है। वो किससे विमर्श है? वो जनता से विमर्श है, जनता से भी विमर्श होना चाहिए, विमर्श का शासन। तो ये चार तरह के स्तंभ बताए गए हैं और मुझे लगता है कि ये जो चार स्तंभ हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अंजू यादव उत्तर प्रदेश से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, अनामिका डे, मधु कुमारी और रोहितास गुर्जर जयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।